السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأصلي وأسلم على حبيبنا المصطفى وعلى آله المجتبى قادة التقى. أما بعد، عن أنس رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري. محترم بزرگو اور دوستو، ایک مختصر سی حدیث پاک جو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی کتاب بخاری شریف میں ذکر فرمائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، یعنی اس کا ایمان ہی نہیں ہے. لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی آدمی مومن نہیں ہوگا. حتی یحب لأخیہ، کب تک مومن نہیں ہوگا؟ جب تک کہ یحب لأخیہ، پسند کرے اپنے بھائی کے لیے، ما یحب لنفسہ، وہ چیز جو خود اپنے لیے پسند کرتا ہو. یہ حدیث بہت ہی مختصر، بہت ہی جامع معنی اور مفید ہے، اور اس کی حکمتیں محدثین کرام نے، حدیث کے شارحین نے بیان فرمائی ہیں. علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی روشنی میں یہ بات نکلتی ہے کہ مومن کا کام حسد نہیں ہے، جلسی نہیں ہے. وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر حسد نہیں کرتا، ایک دوسرے کو دیکھ کر جلتا نہیں ہے، جلسی نہیں کرتا، بلکہ مومن کی شان اور مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرے، بدخواہی ہرگز نہ کرے. اس حدیث شریفہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری امت مسلمہ کو، امت مومنہ کو، یہ مقدس پیغام دیا ہے، ایک ایسا میسج دیا ہے کہ جو اس کو فالو کر لے، جو اس کو اپنا لے، تو اس کی دنیا بھی سکون سے گزر جائے گی اور آخرت تو پرسکون انشاءاللہ ہوگی ہی ہوگی. تو مومن کا کام یہ ہے کہ اپنے مومن بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایک مومن ہے، گنہگار ہے، شرابی ہے، زناکار ہے، وہ ان چیزوں کو اپنے لیے پسند کرتا ہے، تو کیا اس حدیث کا یہ مطلب ہوگا کہ وہ شراب اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرے، زنا اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرے؟ اس کی وضاحت ایک اور حدیث شریف میں کی گئی ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ من الخیر، خیر کی باتوں سے، بھلائی کی باتوں سے، نیکی کی باتوں میں سے اپنے لیے جو پسند کرتا ہے، اپنے لیے جو خیر خواہی کرتا ہے، وہ دوسرے کے لیے بھی خیر خواہی کرے، وہ دوسرے کے لیے بھی وہی چاہے. اور اگر اس حدیث شریف کے اضافے کو نہ بھی مانا جائے، تب بھی ایک مسلمان کی شان یہی ہے، ایک مسلمان کی آئیڈینٹی یہی ہے کہ وہ برے کاموں کو نہ اپنے لیے پسند کرے، نہ اپنے لیے چوز کرے، نہ دوسرے کے لیے چوز کرے، نہ دوسرے کے لیے پسند کرے. تو وہ مومن ہی نہیں ہے کہ جو خود बुरा काम करता हो, कहा कि मेरे साथ बुराई में दूसरे लोग भी शरीक हो जाएं, वो खुद करेगा जरूर, उसको नदामत होगी, पछतावा होगा, लेकिन वो ये नहीं चाहेगा कि इस बुरे काम में, इस जो गंदगी में दूसरा मुसलमान भी उसका साथ दे, ये मुसलमान की शान नहीं है। अब तीसरी बात यहां इस हदीस शरीफ में हमको ये बतलाई गई है कि जब आदमी जो चीज अपने लिए पसंद करता है तो वो दूसरों के लिए पसंद करने लगे। एक एमएस है, कंप्यूटर की जो डिग्री किया हुआ है, वो चाहेगा कि सारे एमएस बन जाएं। एक टीचर है, वो चाहेगा कि सारे टीचर बन जाएं। एक कोई और पेशे से वाबस्ता है, वो चाहेगा कि सारे उसी के जो है हम नवा हम ख्याल बन जाएं। कोई बादशाह है तो चाहेगा कि सारे बादशाह हो जाएं। कोई वजीर है तो चाहेगा कि सारे वजीर हो जाएं। तो जब ये चीज हो जाएगी तो दुनिया का निजाम कैसे चलेगा? दुनिया का निजाम नहीं चल सकता। पुराने मजीद में फरमाया गया है कि वजअलना बाज़हुम बाज़न सुफ़रिया, कि हमने बास को बास का ताबे बनाया, बास को बास का खिदमतगार बनाया। सारे ही मखदूम हो जाते, सारे ही बादशाह हो जाते, सारे ही हाकिम हो जाते, सारे ही वजीर हो जाते, तो फिर वो हुकूमत किस पर करते? तो इसलिए अल्लाह ताला ने हर एक को एक काम के लिए, एक मकसद के लिए पैदा किया और उसको उसमें लगा दिया, ताकि ये निजाम आलम चलता रहे, ये कायनात का सिलसिला चलता रहे। वरना सारे ही जो है एक किस्म के हो जाएंगे तो दुनिया के दूसरे काम कैसे चलेंगे? तो इस सिलसिले में उलमाए किराम ने फरमाया है कि इस हदीस शरीफ का मतलब यह है कि आदमी अपने आप को दूसरे की जगह पर रखकर सोचे कि अगर मैं उसकी जगह होता तो उसके लिए क्या पसंद करता, एक शख्स आता है जो फार्मर है, काश्तकार है, वो आकर के हमारे किसी शेखुल हदीस से ये मशवरा लेता है कि मैं क्या करूं। तो शेखुल हदीस साहब तो अपने लिए बुखारी और मुस्लिम पढ़ाना, तालीम देना पसंद करेंगे। वो बेचारा किसान, फार्मर, काश्तकार, वो क्या जाने कि बुखारी शरीफ क्या है, मुस्लिम शरीफ क्या है, हदीस क्या है। तो अब उसको कहने लगे, भाई मैं तो अपने लिए ये पसंद करता हूं, तुम भी शेखुल हदीस बन जाओ। तो ये नहीं, बल्कि अपने आप को उस किसान की जगह, उस फार्मर की जगह रखे और फिर अपने लिए जो बात मुफीद हो सकती है तो वो उसके लिए पसंद करे। ये हदीस शरीफ का मतलब बयान किया गया है। यहां तक कि लोग इस बात तक का ख्याल रखते थे, एक वाकया मुझे इस पर याद आया जिसको हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह ने लिखा है कि एक आदमी ने किसी अपने दोस्त से शिकायत की कि मेरे घर में जो चूहे बहुत सारे हो गए हैं, चूहे बहुत हो गए हैं। तो कहने लगे कि भाई चूहे बहुत हो गए तो इसका इलाज बिल्कुल आसान है, क्यों घबराते हैं, क्यों परेशान होते हैं? तो कहने लगे कि एक बिल्ली पाल लो, और जब बिल्ली घर में रहेगी तो जो चूहे खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। तो उन्होंने बर्जस्ता ये जवाब दिया कि अगर मैं अपने घर में अपने जो चूहों को भगाने के लिए बिल्ली को पालूंगा तो जाहिर है कि मेरी बिल्ली की आवाज सुनकर के ये चूहे पड़ोस के घर में भाग जाएंगे, नेबर के जो है पास चले जाएंगे, तो लिहाजा उसको तकलीफ होगी। तो ये था जो है हमारे बुजुर्गों का जो है वतीरा, ये था हमारे बुजुर्गों का तर्ज अमल। तो इस हदीस पाक में ये तालीम दी गई है कि आदमी अपने आप को दूसरे की जगह रख करके ये सोचे कि दूसरे के लिए क्या पसंदीदा चीज हो सकती है, उसी को अपनाए। अगर कोई मुसलमान भाई खुशहाली में मुबतला है तो फिर उस पर अल्लाह का शुक्र करे, अल्लाह का शुक्र बजा लाए कि अल्लाह ने उसको नवाजा। तो ये रिस्क मकसूम है, दौलत मकसूम है, नेमत मकसूम है, उसमें जो है कोई किसी का अमल दखल नहीं है। और इसी तरह कोई मुसलमान भाई परेशान हाल है, गिरफ्तार है, मुसीबत है, मसाइल में घिरा हुआ है, तो आजकल का तो फैशन यही है, वो अच्छा हुआ बहुत ऊंची उड़ान उड़ रहा था, फंस गया, गिरफ्तार हो गया, हाँ बहुत अच्छा हुआ, बहुत उसके पर कतरे जाने के काबिल ही थे। तो आजकल हमारा जहन ये हो गया है, अगर किसी को मुसीबत में गिरफ्तार देखते हैं मसाइल में फंसा हुआ देखते हैं, मसाइल का शिकार देखते हैं, बजाय कि उससे हमदर्दी हो शमासत का इजहार करते हैं, दिली खुशी का इजहार करते हैं कि अच्छा हुआ चलो। तो हदीस शरीफ में इसको खुले अंदाज में फरमाया गया है कि ला तुज़हिर शमातत अली अखीक, अपने भाई को किसी मुसीबत में, किसी बला में, किसी परेशानी में, किसी नामुनासिब चीजों में गिरफ्तार होकर के जो है ये मत समझो कि अच्छा हुआ फंस गया, खुशी का इजहार मत करो, हसद मत करो, जलसी मत करो। फयरहमहु अल्लाहु व यबतलीक, अल्लाह ताला उसको उस मुसीबत से, उसको उस गुनाह से, उसको उस दलदल से निकाल देंगे और तुमको उसमें फंसा देंगे। तो इसलिए हर मुसलमान के साथ खैरखाही करनी चाहिए। और इसलिए फरमाया कि ला युमिनु अहदुकुम, तुम्हारा ईमान ही नहीं होगा। ईमान की खैर मनानी चाहिए। अगर हमारे एहसासात, हमारे ख्यालात ऐसे हैं कि हम दूसरों के साथ खैरखाही नहीं करते, दूसरों के साथ हसद का मामला करते हैं, दूसरों को परेशानी में गिरफ्तार देखकर खुश होते हैं, मुसीबत में फंसा हुआ देखकर, तो फिर अल्लाह ताला की कुदरत हमको वार्निंग देती है कि अल्लाह ताला उसको तो उस पर तो रहम का मामला फरमा देंगे, उसको उस बला से जो है नजात दे देंगे और हम उसकी जगह फंस जाएंगे। तो इसलिए बहुत बड़ी वार्निंग है। और इसमें यह कहा गया कि ईमान ही नहीं होगा उसका। अब उलमा कहते हैं कि भाई हम तो मोमिन हैं, ईमान कहां गया? तो यहां पर मुसलमान को यह पता गया कि इन चीजों से उसका ईमान ही जाता रहता है, ईमान ही खतरे में पड़ जाता है। तो ये बहुत सी मामूली चीजों में हम अपने भाइयों के साथ, अपने जो मुआशरे के साथ, अपनी सोसाइटी के साथ हम क्या कर रहे हैं, उनके साथ बदखाही कर रहे हैं या उनके साथ खैरखाही का मामला कर रहे हैं? क्योंकि जब तक कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के साथ खैरखाही का मामला नहीं करेगा, उसका ईमान ही नहीं होगा। तो इसी सिलसिले में इस हदीस पाक के रोशनी में मैं आगे कहना चाहूंगा, आगे बढ़कर, कि माशाअल्लाह से अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में यह फरमाया है कि इंसान की तखलीक का मकसद, इंसान की पैदाइश का मकसद इबादत। इबादत, अल्लाह ने अपनी इबादत और अपनी इताअत के लिए इंसान को पैदा किया। और हदीस शरीफ में फरमाया गया है कि बुनियल इस्लाम अला खमसिन, इस्लाम की बुनियाद पांच चीजें हैं, बेसिक चीजें इस्लाम की पांच हैं। शहादत अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, के इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई और माबूद नहीं है और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। नंबर एक। व इकामिस सलाह, ये भी बेसिक चीज है, दीन की बुनियादी बेसिक चीज। व इकामिस सलाह, नमाज कायम करना। अरबी में अल्फाज ये हैं कि नमाज को कायम करना, और उर्दू में बोला जाता है कि नमाज पढ़ना। तो नमाज पढ़ना और नमाज कायम करना, इन दोनों माना में जमीन व आसमान का फर्क है। हम लोग नमाज को कायम नहीं करते बल्कि नमाज को पढ़ लेते हैं। जैसे कि अगर किसी को कोई चीज याद हो, उसको नींद में से उठा करके खड़ा कर दिया जाए, भाई ये क्या चीज है, तो पर जुबानी सुना देगा। इसी तरह हमारी इबादतें ये आदत के तौर पर हो गई है, रस्मी तौर पर हो गई है, हमारी नमाज रस्मी तौर पर हो रही है। हर इबादत का एक जाहिर होता है और हर इबादत का एक बातिन होता है। तो नमाज मौकूफ है तहारत पर, तहारत का भी एक जाहिर है, वजू का भी एक जाहिर है, गुस्ल का भी एक जाहिर है और उनका एक बातिन भी है। तो वजू का जाहिर यह है कि आजाए जाहिरी जिस्म के आजा साफ हो जाए, और वजू का बातिन यह है कि दिल की सफाई हो जाए, दिल शिर्क से पाक साफ हो जाए, दिल हसद से, कीने से, बुराइयों से, सारी चीजों से, नफरतों से पाक साफ हो जाए, ये बातिन की सफाई है। इसी तरह नमाज का एक जाहिर है, नमाज का जाहिर है कि नमाज के लिए वजू शर्त है, गुस्ल शर्त है, तहारत शर्त है। नमाज के शराइद उलमाए किराम ने अलग बयान फरमाए हैं। इसी तरह नमाज के फराइज अलग बयान फरमाए हैं, नमाज के वाजिबात अलग बयान किए हैं। जब हम किसी भी लाइन में इन्वॉल्व होते हैं, कोई भी काम शुरू करते हैं, बिजनेस शुरू करते हैं, तो उसकी सारी चीजों को स्टडी कर लेते हैं कि भाई इसमें ये क्या होगा, ये क्या होगा, क्या चीज इम्पोर्टेंट है, क्या चीज जो है गैर जरूरी है, किस चीज से उसके बगैर काम चल सकता है, तो सारी चीजों की स्टडी कर लेते हैं। नमाज पढ़ रहे हैं हम, क्या हमें मालूम है कि नमाज में फराइज कितने हैं, नमाज में शराइत कितने हैं, किन चीजों से नमाज नहीं होती, किन चीजों से नमाज में सजदे सहू कर लेने से गलती हो जाए तो तलाकी हो जाती है, नमाज के वाजिबात क्या हैं, ये नमाज के जाहिरी चीजें हैं। नमाज का जाहिर ये है और नमाज का बातिन क्या है कि अस्सलातु तखश्शुउन व तज़र्रुउन व तमस्कुनुन, कि नमाज का मतलब ये है कि नमाज में खुशू खुजू हो, आजिजी और इनकिसारी हो, गिरिया और जारी हो। नमाज जो आदमी अदा करता है तो इसका मतलब ये है कि हदीस शरीफ में आया है कि नमाजी अल्लाह से मुनाजात करता है, अल्लाह से राज व नियाज प्यार मोहब्बत की बातें करता है, अल्लाह से हम कलाम होता है। जब अल्लाहु अकबर कहता है जब कोई बंदा तो अल्लाह ताला उसके सामने आ जाते हैं, अल्लाह ताला उसके सामने मुतवज्जे हो जाते हैं। क्या हम नमाज इस तसव्वुर के साथ अदा कर रहे हैं कि नमाजों में हमारी जान है, नमाजों में हमारी रूहानियत है, हमने उम्र भर नमाज पढ़ डाली, क्या कोई एक ऐसी नमाज कि अल्लाहु हाजिरी अल्लाहु नाजिरी अल्लाहु मई, कि अल्लाह यहां हाजिर है, मैं अल्लाह के सामने हाजिर हूं, अल्लाह मुझे देख रहा है, अल्लाह मेरे साथ है, वनहन अकरबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, कि अल्लाह शहरत से भी हमारे बहुत ज्यादा करीब है। अगर हम कहीं जाते हैं किसी के दरबार में, किसी के कोई प्रेसिडेंट हमको बुलाए तो वहां जाने के बाद कैसे चौकन्ने होकर बैठते हैं, कैसे चौकस होकर बैठते हैं कि कोई आदाब के खिलाफ बात न हो जाए, कहीं हम पर इताब नाजिल न हो जाए, हमारी हरकत को वाच किया जा रहा है, कैमरे लगे हुए हैं, तो हम वहां पर बिल्कुल पुरसुकून अंदाज में अदब के साथ खुशू के साथ कि कोई ऐसी हरकत न हो, कोई प्रेसिडेंट के पास मुलाकात के लिए जाके वहां नाक में उंगली, इधर दाढ़ी को जा रहा है, इधर ये कपड़े सी दे कर रहा है, ये कर रहा है, हम लोग नमाज में क्या क्या कर जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमें मालूम तो है लेकिन मामूल नहीं है, मालूमात तो है, इल्म है, अमल करने की जरूरत है, कि नमाज को हकीकी मानों में नमाज बनाने की जरूरत है। क्योंकि हदीस शरीफ में आया है कि बहुत से लोगों की नमाजें ऐसी हैं जो उनके सर से ऊपर भी कबूलियत के लिए नहीं जाती, और बाज लोगों की इससे ऊपर जाती हो तो आसमान से जो है उसको चिंदी की तरह, मैले कुचेले कपड़े की तरह उसके मुंह पर वापस फेंक दिया जाता है। तो इसलिए अल्लाह ताला से हुस्न ज़न रखना चाहिए, उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ कोशिश भी करनी चाहिए कि हमारी नमाजों में रूहानियत आ जाए, ये उठक बैठक ना हो, ये रस्मी चीज ना हो, आया टाइम ऑटोमेटिक मशीन की तरह हमने अजान भी दे ली, हमने इकामत भी कर ली और हमने नमाज भी पढ़ ली और कुछ पता नहीं होता कि हमने क्या किया। तो इन चीजों के तसव्वुर के साथ, खुदा के हुजूर में हाजिरी के तसव्वुर के साथ, खुदा सामने है उसके तसव्वुर के साथ, खुदा हमको देख रहा है इस तसव्वुर के साथ जो इबादत की जाएगी, जो नमाज कायम की जाएगी, वो नमाज हकीकी मानों में नमाज होगी। वरना हमारी इबादतें क्या और हमारी गंदी शख्सियतें क्या, हम इस काबिल नहीं कि अल्लाह पाक का लफ्ज हम अपनी नापाक जुबान पर ला सकें। अल्लाह अकबर जब हम कहते हैं तो अल्लाह, ये अल्लाह का इस्म आजम है, सबसे बड़ा नाम है, और इस्म आजम के बारे में कहा जाता है कि जब इस्म आजम के जरिए जो भी दुआ मांगी जाए कबूल होती है। हम हर नमाज के वक्त अल्लाह अकबर कह लेते हैं, लेकिन क्या अल्लाह की अजमत, अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह की किबरियाई, ये तसव्वुर हमारे सामने होता है? रस्मी तौर पर रट लिया है और ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिक मशीन की तरह, एटीएम की तरह ये हम जो है पूरी इबादत कर जाते हैं। तो अल्लाह अकबर इस्म आजम है। हजरत इमाम अबू जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने सवाल किया कि इस्म आजम क्या है, जरा मुझे बतलाइए, इस्म आजम के बारे में मैंने सुना है। तो इमाम अबू जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह उस अपने साथी को दरिया के पास ले गए और वहां पर आहिस्ता 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 उसको दरिया में इतनी हद तक ले गए पानी की, जो पानी उसके जो है सर के लेवल तक आ गया, और वो तैरना जानता नहीं था, स्विमिंग जानता नहीं था, तो उसने जो है بڑے ہی درد کے ساتھ، بڑی بے چینی کے ساتھ، بڑے کرب کے ساتھ پکارایا، ابو جعفر صادق مجھے بچا لیجیے، مجھے بچا لیجیے، مجھے بچا لیجیے. خیر وہ تھوڑی دیر تک دیکھتے رہے، اس کے بعد پھر اس کو بچا کر کے کنارے پر لائے اور اسے کہا کہ اے بھائی، جس بے چینی کے ساتھ، جس تصور کے ساتھ، جس عقیدت اور محبت اور عظمت کے ساتھ تو نے یہ پکارا تھا کہ اے ابو جعفر صادق مجھے بچا لو، تو اسی کیفیت کے ساتھ جب تم اللہ کہو گے تو وہ اللہ اسم اعظم بن جائے گا، وہ اللہ اسم اعظم بن جائے گا. تو یہ میرے بزرگوں دوستو، اذان شاعر اسلام میں سے ہے. اذانیں ہماری صحیح نہیں ہیں، ہماری نمازیں صحیح نہیں ہیں، ہمارا قرآن پاک صحیح نہیں ہے، ہماری صورتیں صحیح نہیں ہیں، ہمارا روزہ بس فاقے کے طور پر ادا ہو جاتا ہے، ہمارا حج ایک دوسرے کی کاپی میں، ایک دوسرے کی تقلید میں بہت سے لوگ حج بھی کر کے آتے ہیں، لیکن ان کی روحانیت کیا ہے؟ ان میں روحانیت کیسے آتی ہے؟ یہ بے جان چیزوں کے طور پر، جب جسم کے اندر جان نہ ہو اس کو تو دفن کیا جاتا ہے، اس کو تو فوراً سے فوراً جو دفاع کرنے کی قبرستان میں لے جانے کی کوشش کی جاتی ہے. اسی طرح ہماری عبادتیں یہ صرف ظاہری طور پر تو ادا ہو رہی ہیں، لیکن باطنی طور پر روحانیت سے بالکل خالی ہیں. اس میں جان نہیں ہے، جان ڈالنے کی ضرورت ہے، اور جان آئے گی معلومات سے، علم سے، اور معلومات میں جان آئے گی معمول بنانے سے، اس پر عمل کرنے سے. معلوم تو ہم کو سب کچھ ہے آج کل، لیکن عمل نہیں ہو رہا ہے. انشاءاللہ تعالی اگلی بات پھر اگلے خطبات میں ہوگی. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ کہا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.